आपके हस्बैंड कहते हैं बेगम आप मुझे इतनी प्यारी लगती हैं, बस दिल चाहता है आप सिर्फ लाउंज ड्राइंग रूम में सेट होके बैठी रहे डॉल की तरह, बस बस आप कहीं जाया ना करें। आप अपने हस्बैंड की बात मानती हैं और आप कुरान को व्हाट्सएप पर किसी ऑनलाइन क्लास में घर में सुनना पढ़ना शुरू कर देती हैं और आप अपने इखलाक को बेहतर करती हैं, आप अपने रब को पहचानती हैं, आप अपने बच्चों की तरबियत करती हैं, क्या आप जन्नत में नहीं जा सकते? जा सकती हैं कि नहीं जा सकती? आपकी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। जा सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम के मुताबिक वो औरत वो अल्लाह की बंदी जो अपने फराइज पूरे करे और वो अपने तमाम अमानतों का ख्याल रखे जो रब ने उस पर रखी हैं और अपने शोहर की फरमाबरदार हो, इन ब्रैकेट विद स्टेरिक, उन चीजों में जो शरीयत की काम वो करने का कहे। अगर अपने शोहर की फरमाबरदार हो तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी, आठों दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। तो रोया ना करें कि हम औरतों को तो इस्लाम कोई पोजीशन ही नहीं देता। जो आपको पोजीशन दी वो मर्दों को नहीं दी है। रोते क्यों हैं? ये पढ़ लेते हैं कि हमने हदीस सुनी है कि औरतें जहन्नुम में ज्यादा जाएंगी, क्या ये सही है? अगर ये सही है सो इट हैज अ कॉन्टेक्स्ट। ये भी सही है कि औरतें जन्नत के आठों दरवाजों से जिस दरवाजे से चाहेंगी दाखिल हो जाएंगी। आपके पांव के नीचे जन्नत है, आपके शोहर के पांव के नीचे जन्नत नहीं है। आपका इखलाकी हक, आपकी औलाद जो आपके सामने है उसके ऊपर आपका हक ज्यादा है। कानूनी हक बाप का होता है, इखलाकी हक 3 times माँ का है। वो हदीस याद है जब एक शख्स ने आकर आपसे पूछा था कि मेरी माँ का मुझ पर कितना हक है या सबसे ज्यादा मुझ पर कितना हक है, तो आपने कहा था तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ, एंड 4th time रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन किया तुम्हारे वालिद। तो आपको और मुझे जो अल्लाह ताला ने ये तमाम मामलात दिए हैं इसमें मुझे और आपको अपनी शाकिला से अपने पोटेंशियल से अपनी फितरत को तलाश करके जन्नत का रास्ता अडॉप्ट करना है। कुरान सीखने के कई दर्जे कई मौके कई रिसोर्सेस मौजूद हैं। एवोल्यूशनरी स्केल में इंसान इज द हाईएस्ट स्पीशी। मैं आपको इसी एवोल्यूशनरी स्केल का ही पॉइंट स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट करके बता रही हूं। अल्लाह ने जितनी मखलूकात बनाई हैं अल्लाह ने उनको समझ ले उनकी जिंदगी को 2 lines के दरमियान में रखा है। इंसान को अल्लाह ने सिर्फ बॉटम लाइन दी है। बॉटम लाइन इज द फितरा। इस बॉटम लाइन से नीचे आएंगे तो असफल साफिलीन हो जाएंगे। बॉटम लाइन लाइन इज द बेयर मिनिमम। बॉटम लाइन आपकी और मेरी फितरा है। अल्लाह ने कहा है इंसान को इस फितरत से नीचे नहीं आना। रब को रब के मुकाम पर रखना है, रिश्तों को रिश्तों के मुकाम पर रखना है, जिंदगी में कुरान को साथ साथ लेकर चलना है। दिस इज द बॉटम लाइन। फराइज पूरे करने हैं, दिस इज द बॉटम लाइन। फितरा आपकी और मेरे लिए बाकी मखलूकात की तरह उससे ऊपर कोई लाइन मौजूद नहीं है। क्यों? इसलिए कि दीन कहता है एहसान एडॉप्ट करने के लिए स्काई इज द ओनली लिमिट। बढ़ते जाएं आगे और करते जाएं नेकियां। बिल्कुल जैसे हर एक को अपना बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस अच्छा लगता है, मुसलमान को मोमिन को अपनी बढ़ती हुई नेकियां अच्छी लगनी चाहिए। स्काई इज द ओनली लिमिट। तो अल्लाह ताला ने कुरान दिया है ताकि हम बेयर मिनिमम से एक लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज के सफर पर अपने आप को आगे बढ़ाएं, ताकि नेकियों के रास्ते पर हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को आगे बढ़ाएं। यह है रहमान की मोहब्बत कि उसने इंसान को बाकी मखलूकात से मुख्तलिफ बनाया और उनको कुरान सिखाया है। तो हमें लिटरली अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। टू फॉल इन लव का एक्सप्रेशन सबसे पहले हमारी जिंदगी में अल्लाह के लिए आना चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन है टू फॉल इन लव, कभी इसको डाइसेक्ट किया है? आप अपने हस्बैंड से कहते हैं आई एम इन लव विद यू। टू फॉल इन लव का एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये होता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप उसके सामने अपनी ईगो को पीछे कर देते हैं। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके सामने आपको बाज़ औक़ात अपनी कई ख्वाहिशात को पीछे करना पड़ता है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप उसके नाज और नखरे उठाते हैं। आप अपनी औलाद के नाज और नखरे उठाते हैं? कोई एक या दिन में हजारों? दिन में हजारों। सो टू फॉल इन लव का एक्सप्रेशन इंसानों पर तो ऐसे अप्लाई करता है। To fall in love का expression अल्लाह पर कैसे apply करता है? जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत में अपने आप को आगे बढ़ाता है, वो linguistically अगर देखा जाए तो सजदे में गिरे बगैर जिंदगी गुजार नहीं सकता. This is a literal fall in love. आप अल्लाह के सामने सजदाए शुक्र करें, आपकी जिंदगी में नमाज कभी मिस नहीं होगी, आप अपनी जिंदगी में अल्लाह से दूर कभी नहीं होंगी. और ये आपको उस वक्त महसूस होगा जब आप एब्सोल्यूट लव अल्लाह का अपने दिल में टॉप लिस्ट पर ले आएंगे. आजकल जो आप तरावियां पढ़ रहे हैं, जो उसमें आप सजदा करते हैं, बाकी नमाजों के मुकाबले में तरावी की नमाज में आपने महसूस किया होगा जरा लंबा सजदा करने का दिल करता है. ऐसा ही होता है ना, ये वो मोहब्बत होती है जो आपको कुरान के सुनने की वजह से फितरत को टच कर रही होती है. और जितना कुरान फितरत को टच कर रहा होता है उतना आपका रब की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ता जाता है. अल्लाह ने जहां इंसान को तख्लीक किया तो अल्लाह ने इंसानों के अंदर इस मोहब्बत के एसेंस को महसूस करने के लिए खास एंगल रखा है. वो ये कि इंसान सिर्फ और सिर्फ किसी के मिसाल के तौर पर टच से मोहब्बत को महसूस नहीं करता. आपका बच्चा बहुत आपको गले लगाता रहे, आके आई लव यू कहता रहे, लेकिन जब आपको जरूरत हो, जब आप बीमार हो या जब आप चाहें कि आपका बच्चा आपके काम करे, वो उस वक्त बिल्कुल आपके साथ जो है वो किसी किस्म का मामला ना करे, अच्छा लगता है? नहीं लगता. वाई सबर सा. बाज उलमा कहते हैं बाज लोग आपको वैसे गले लगाते रहते हैं लेकिन जब अल्फाज वो आपके लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बिटर इस्तेमाल करते हैं. ऐसे लोग भी होते हैं जो वैसे आपको गले लगाते रहेंगे, वैसे आपको बहुत प्यार से अपने आप के एक एक्सप्रेशन देते रहेंगे लेकिन जब अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बिटर इस्तेमाल करेंगे. तो इंसान में अल्लाह ने ये रखा है, अल्लाह ने इंसान में अल्फाज की खास फीलिंग्स रखी हैं. ये इंसान का एक खास करेक्टरिस्टिक है. अल्फाज को इंसान महसूस करता है. कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं, कुरान अल्लाह का कलाम है. आपने और मैंने अल्लाह को नहीं देखा, हम अल्लाह की मोहब्बत को अल्लाह के कलाम से महसूस करते हैं, अल्लाह के अल्फाज से महसूस करते हैं. तो कुरान दिया गया है फॉरगेटफुलनेस में जिक्रा के तौर पर, और कुरान दिया गया है अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, और अल्लाह से मोहब्बत हम कुरान में अल्लाह के अल्फाज के जरिए करते हैं. इसलिए कि अल्लाह ने हमें सिखाया है अल्फाज दिलों को जोड़ भी देते हैं, अल्फाज दिलों को तोड़ भी देते हैं. इसलिए जो मोमिन होता है, जो अपने ईमान के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचने की कोशिश में लग जाता है, वो बहुत सोच समझ के बोलता है, गुस्से में नहीं बोलता. चाहे वो माँ से बात करे, चाहे वो शौहर से बात करे, चाहे वो बहन भाइयों से बात करे, इंसान अपने अंदर एक अल्लाह की मोहब्बत को लाना शुरू कर देता है. जब आप इस एंगल से कुरान पढ़ेंगे, सूरह रहमान में भी जहन्नुम का जिक्र आएगा, अगर एक दफा आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई तो चाहे आप कौमों के अजाब को पढ़ें, चाहे आप जहन्नुम के जिक्र को पढ़ें, चाहे आप ये पढ़ें कि अल्लाह ताला किस किस तरह की सजाएं जहन्नमियों को देगा, आपको उस तमाम कलाम के पीछे अल्लाह की मोहब्बत महसूस होगी. बाज़ोकात हम बिल्कुल सतही बातें करते हैं इस्लाम की, सतही मोहब्बत रखते हैं अल्लाह की, तो वो जो सतह पर अल्फाज होते हैं जहन्नुम के विविड डिस्क्रिप्शन के, हम वही कहते हैं अल्लाह इतना ज्यादा जहन्नुम का जिक्र कुरान में क्यों आता है. हालांकि आप डेप्थ में जाएं तो आपको पता चले कि ये अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह याद दहानी कराता है, और अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह ने इंसानों के दिल में इस मोहब्बत को इनग्रेन करने के लिए जो रसूल दिए उनके लिए भी अल्लाह ने ये कहा कि ये कंप्लीट रहमत है. वमा अरसलना का रहमतल आलमीन, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल आलमीन. अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ रहमत बनाकर भेजा है. तो कुरान नंबर वन क्रिएशन के लिए ज्यादा अहम है. कुरान का आना इस इंसान से पहले, इस सूरह रहमान में ये मेंशन करता है कि हमारी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस अल्लाह की नजर में ज्यादा अहमियत रखती है. कुरान इंसान को दिए गए तमाम नेमतों में टॉप नेमत है. कुरान इंसान को दिए गए तमाम रिस्क में बेहतरीन रिस्क है. और असल खुदा वही होता है जो फिजिकल नीड्स के साथ साथ स्पिरिचुअल नीड्स को भी पूरा करे. तो अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया कि इंसान को अल्लाह ने इसीलिए ये कलाम दिया है. आप लोगों ने आजकल एक टर्म सुनी होगी जो बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से जान छुड़ाना चाहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन क्या होता है? देखिए, एक होता है नाम का मुसलमान होना, नाम का क्रिश्चियन होना, नाम का बुद्धिस्ट होना। सिर्फ रिक्वायरमेंट है रिलीजन तो वो बॉक्स में लिखा है। इसी तरह से मुसलमान भी होते हैं जो नाम के मुसलमान होते हैं। वो नाम के मुसलमान सिर्फ पैदाइश के वक्त शायद अकीका कर लें, या मरते हुए अपने मुर्दों को शायद मुसलमानों के तरीके के मुताबिक दफना दें। बाकी जितना दरमियान का लाइफ स्पैन है उसमें दीन कहीं नहीं होता, उसमें ख्वाहिशात होती हैं, अपनी मर्जी होती है, जैसे चाहो जियो का स्लोगन होता है, यू ओनली यंग वंस का स्लोगन पूरी जिंदगी नजर आता है। ये वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से जान छुड़ाते हैं। और ये इंसान है तो इंसान ना, फितरत तो है ना, किसी से मोहब्बत करना चाहता है, किसी को उस सुप्रीम पोजीशन पर रखना चाहता है। तो जब अल्लाह की कोई कदर सारी जिंदगी नहीं करते, तो आजकल हमें एक जुमला सुनने को मिलता है, वी आर स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। सुने, वी आर स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। ये उन लोगों के जुमले, या इससे मिलता जुलता कोई जुमला आपको मिल जाएगा, ये उन लोगों के जुमले हैं जिनके लिए ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन उनको गले का फंदा लगता है। 5 वक्त की नमाज हम क्यों पढ़ें? हम अल्लाह के रास्ते में कोई बहुत सा पैसा दे देंगे। कुर्बानी करना कोई फर्ज नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं, आप क्यों कुर्बानी करते हैं ईद के मौके पे? रोजे रखने की क्या जरूरत है? अल्लाह को हमारी भूख प्यास की जरूरत नहीं है। ये सब और इस तरह के कई एक्सक्यूजेस, लेकिन क्योंकि इंटरनल फितरा तो अंदर से डिमांड करती है ना कि कोई हस्ती हो जिससे मोहब्बत की जाए, जिसकी इबादत की जाए, उस फितरा को आप दबा नहीं सकते। तो जब इंसान उसको कंप्लीटली हार्नेस नहीं करता है, तो इस तरह के लूज जुमलों से अपनी फीलिंग करता है। अगर आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, तो आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड हिंट, ऐसे लोग बहुत अच्छा टारगेट हैं दीन के दावत के लिए। बिकॉज याद रखिये, उनको स्पिरिचुअलिटी पसंद है। दे आर सेइंग वी आर स्पिरिचुअल, और इस्लाम के साथ, रिलीजन के साथ जुड़कर आप एग्जैक्टली स्पिरिचुअल हो सकते हैं। सो इट्स अ गुड टारगेट। बस अल्लाह से हिकमत मांगे कि आप ऐसे लोगों तक दीन की मोहब्बत को पहुंचा सकें। अल्लाह से हिकमत मांगे कि आप ऐसे लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ सकें। एक आखिरी पॉइंट, अहले सुन्नत वल जमात, अल्हम्दुलिल्लाह जिससे हम सबका ताल्लुक है, अहले सुन्नत वल जमात इज अ मेन सेक्ट जिसके अंदर चारों स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं, जो सुन्नी सेक्ट है। अहले सुन्नत वल जमात में एक, आपको मालूम होगा, एक बहस चली थी हमारे ट्रेडिशनल स्कॉलर्स में कि अल्लाह ने यहां पर 2-3 आयात में 2 अल्फाज एक जैसे इस्तेमाल किए हैं। अल्लाह ने कहा अल्लमल कुरान, उसके बाद क्या कहा? खलकल इंसान। अल्लाह ने खलकल कुरान नहीं कहा, नहीं कहा ना। इसके ऊपर बहुत लंबी लंबी आपको बहसें मिलती हैं, एक जुमला में बोलूंगी, शायद आप में से जिन्होंने सुना हो आपको आइडिया हो जाएगा, या अगर आप फ्यूचर में सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका माइंड यहां क्लियर हो जाएगा। अहले सुन्नत वल जमात का ये कॉन्सेप्ट है जमहूर उलमा का कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है। वो कहते हैं अल कुरान हुआ कलामुल्लाह गैरु मखलूक। कुरान अल्लाह का कलाम है, और दलील में सूरह रहमान की ये 2 आयात दी जाती हैं कि अल्लाह ने कुरान के लिए खलकल कुरान नहीं कहा, अल्लमल कुरान कहा। इमाम अहमद का यह जुमला है, इमाम अहमद इब्न हंबल का, अल कुरान हुआ कलामुल्लाह गैरु मखलूक। इसलिए कि कुरान अल्लाह ही की हस्ती का हिस्सा है, अल्लाह का कलाम है। मैं आपके कलाम को आपसे अलग कर सकती हूँ? आपका कलाम पार्ट ऑफ यू। इसीलिए कुरान अल्लाह का कलाम है, तो इसके लिए प्रेफरेबल है कि आप इसको हाथ लगाने से पहले वुजू करें, पसंदीदा है। तिलावत करनी है तब तो प्रीरिक्विजिट वुजू है ही है, लेकिन पसंदीदा है कि आप वुजू करके हाथ लगाएं। कभी मुमकिन नहीं होता तो इजाजत है, लेकिन तिलावत के लिए प्रीरिक्विजिट क्या है? वुजू किया जाएगा। इसीलिए हालत हैज में और हालत जनाबत में इस कुरान को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दी जाती है। क्यों? या तो आप स्टूडेंट हैं और आप ग्लव्स पहनकर ये काम करती हैं कुरान की तालिब इल्म होने की हैसियत से, तब आपको इजाजत है हालत हैज में। लेकिन ये सब वो पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि अल्लाह ताला ने फंडामेंटल एविडेंस ये बताया है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. جیسے اللہ اٹرنل ہے, اب کیا آپ کے پاس کنفرم جملہ آ جائے گا, جیسے اللہ اٹرنل ہے قرآن بھی اٹرنل ہے, اسی لیے قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا. مخلوقات میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, مخلوقات میں ایولوشنری سٹیجز آ سکتے ہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے, 1450 سال پہلے دیا گیا رہتی دنیا تک کے انسان کے لیے یہی قرآن ہدایت کا سورس رہے گا. صحیح. تو یہ وہ پوائنٹ تھا جو انشاءاللہ آپ کو اگر فیوچر میں کبھی تفسیر پڑھنے کا موقع ملے گا تو قرآن کے ریفرنس سے آئے گا. آیت نمبر 4, اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا علمہ البیان, اللہ نے اس کو سوفسٹیکیٹڈ سپیچ سکھائی ہے, ایلوکوینٹ سپیچ سکھائی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے مختلف کیا. ابھی میں نے آپ کو ایک مختلف ہونے کا اینگل بتایا تھا, باقی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دو لائنز کے درمیان میں رکھا ہے, وہ اسے ایکسیڈ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر چڑیا کا کام جو اللہ نے اس کے اندر انگرینڈ کر دیا ہے, چڑیا اسے ایکسیڈ نہیں کر سکتی ہے.